पृष्ठ संख्या 30 लक्षणा के भेद।
लक्षणा
रूढ़ी प्रयोजनवती, प्रयोजनवती गौड़ी शुद्धा, गौड़ी सारोपा साध्यावसाना, शुद्धा उपादान लक्षणा लक्षणा सारोपा साध्यावसाना। जब रूढ़ी के आधार पर लक्षणा की जाए या मुख्यार्थ को छोड़कर लक्षार्थ ग्रहण किया जाए तो कौन सी लक्षणा होती है? रूढ़ी लक्षणा। जब किसी अभिप्राय विशेष या प्रयोजन के आधार पर लक्षणा की जाए तो कौन सी लक्षणा होती है? प्रयोजनवती। लक्षणा के प्रमुख भेद कितने हैं? दो, रूढ़ी लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? 12। किस लक्षणा को अविधा पुच्छ भूता कहते हैं? रूढ़ी लक्षणा को। किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है? विश्वनाथ। मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 12। अविधा तथा लक्षणा शक्तियाँ जब अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाती जाए तब जिस शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं व्यंजना। व्यंजना के प्रमुख भेद कितने हैं? 2, शाब्दी और आर्थी। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणहीन। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। पंक्तियाँ किसकी है? देव। संस्कृत काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम एकत्र व्यवस्थित विशद तथा संग्रहात्मक निरूपण किया किस आचार्य ने किया? मम्मट। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ? भरत कृत नाट्य शास्त्र से। कीर्ति भड़िति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? तुलसीदास। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, किस कवि की पंक्ति है? तुलसीदास। काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है? रस संप्रदाय। छंदो मंजरी का ग्रंथ के प्रणेता कौन है? गंगादास। किस काव्य को चित्र काव्य कहा गया है? अधम काव्य को। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता है कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके तब तक उसमें रस आदि बोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती, यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल। पृष्ठ संख्या 31। बंध के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? 2, प्रबंध और मुक्तक। पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को कहते हैं मुक्तक। पूर्वावर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना को कहते हैं प्रबंध। साहित्य शब्द किस सदी में प्रचलित हुआ? 7वीं-8वीं शती। संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? वाङ्मय। रस का विरोध किस आचार्य ने किया था? भाम। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कितने माने गए हैं? 3, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, धर्म्यम यशस्य मायुष्यम हित बुद्धि विवर्धन लोकोपदेश जननम नाच्यमेतद् भविष्यति कहकर किस आचार्य ने धर्म यश और आयु का साधक हितकारक बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेश को नाटक काव्य का प्रयोजन माना है? भरत मुनि। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक छब्यम कलासुचक करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधन। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में से पंक्तियाँ किसकी है? भाम। गौड़ी पांचाली एवं वैदर्भी इन तीन रीतियों के अतिरिक्त मागधी और मैथिली नामक रीतियों का उल्लेख किसने किया है? राजशेखर। किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्या है? पांचाली। तात्पर्य क्या है? अविधा लक्षणा व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति भाम अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की। कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर। किस तत्व को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा गया है? रस को। प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु सर्वप्रथम किसने माना? हेमचंद्र। प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम किसने दिया? दंडी। वाग्वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम् का सूत्र किसका है? अग्नि पुराणकार। बुढ़ी भूद्यंग के कितने भेद हैं? 8। वाच्यता असह का अन्य नाम है रस ध्वनि। भरत ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? 6। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहकर रस को ध्वनि का एक भेद किस आचार्य ने माना? आनंद वर्धन। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं 6 भेद 41 उपभेद। हेतुर्न तू हेतव किसने कहा? मम्मट। रमणीय अनुभूति उक्ति वैचित्र्य और छंद इन तीनों का समंजित रूप कविता है कथन किसका है? नगेंद्र। पृष्ठ संख्या 32। किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य अर्थालंकारों को मध्यम काव्य गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम काव्य उत्तमोत्तम कहा? जगन्नाथ। जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? नंदिकेश्वर। भरत ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 गिनाई है 8 स्थायी भाव 33 व्यभिचारी भाव 8 सात्विक भाव। भरत मुनि द्वारा श्रृंगार रस के भेद अवस्थानुसार संयोग वियोग अभिनय की दृष्टि से वचनात्मक विषात्मक क्रियात्मक पुरुषार्थ की दृष्टि से धर्म श्रृंगार अर्थ श्रृंगार काम श्रृंगार। धनंजय ने श्रृंगार के तीन भेद किए आयोग विप्रयोग संभोग। भरत ने करुण रस के तीन भेद किए धर्मोपधातज अर्थापचयोद्धव शोक कृत। भरत द्वारा भयानक रस के भेद 3 ब्याजजन्य या कृत्रिम अपराधजनक वित्रासितक। भरत द्वारा विभत्स रस के भेद 2 शुद्ध या क्षोभक्ष अशुद्ध या उद्वेगी। भरत द्वारा अद्भुत रस के भेद 2 दिव्य आनंदज। भरत द्वारा रौद्र रस के भेद 3 आंगिक वेशात्मक वचनात्मक। काव्यम ग्राह्य अलंकारात् सूत्र किसका है? वामन। सौंदरम अलंकारः कथन किसका है? वामन। काव्य शोभाया कर्तारो गुणा तद तीशय हेतवः अलंकारः कथन किसका है? वामन। रस के संबंध में भरत पूर्व दो परंपराएं पाई जाती हैं। एक है द्रुहिड अर्थात ब्रह्म की और दूसरी है वासुकी की। द्रुहिड 8 रस मानते थे एवं वासुकी 9वां शांत रस भी मानते थे। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामा ने अलंकारों का प्राण तत्व किसे माना है? वक्रोक्ति को। अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? रुद्रट। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस का वर्ण श्याम तथा उसका वेश उज्जवल बताया है। आचार्य भामा ने काव्य हेतु कितने माना है? प्रतिभा को किसे माना है? आचार्य भामा ने काव्य हेतु किसे माना है? प्रतिभा को। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः काव्य हेतु के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? भामा। एत एव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता दोष का विपर्यय काव्य में गुण माना जाता है कथन किस आचार्य का है? भरत। गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य है वामन। काव्य शोभाया कर्ता से धर्मा गुणा कथन किस आचार्य का है? वामन। गुण संप्रदाय को किस आचार्य के अंतर्गत माना जाता है? रीति संप्रदाय। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेतवस्तवस्त्वलंकाराः पृष्ठ संख्या 33। काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण हैं और उसको अधिक उत्कर्ष देने वाले अलंकार हैं कथन किस आचार्य का है? वामन। किस आचार्य ने रामायण में करुण रस एवं महाभारत में शांत रस का प्राधान्य माना है? आनंद वर्धन। रसे नैव जीवति सर्वं काव्यम्, काव्य रस के द्वारा ही जीवित रहता है। कथन किस आचार्य का है? अभिनव गुप्त। किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र उज्जवल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो जाता हो सकता है? भरत मुनि। श्रृंगार रस को रस राज माना जाता है कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण। भामा ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखा और रस संबंधी रसवत प्रेयस तथा ऊर्जस्वी नामक तीन अलंकारों का वर्णन किया। ये अलंकार क्रमशः रस भाव तथा उनके आभास की अवस्थाएं हैं। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखकर रस संबंधी रसवत प्रेयस तथा ऊर्जस्वी नामक तीन अलंकारों का वर्णन किया? भामा। किस आचार्य ने गुणों को शोभा कर धर्म, अलंकारों को शोभा वर्धक तथा रस को गुणों की कांति कहा? वामन। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रसालंकारों में समाहित को स्वीकार किया तथा नाट्य में शांत रस की प्रतिष्ठा की? उद्भट। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने न्याय सिद्धांत के आधार पर रस की अनुमिति का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ध्वनि के स्थान पर काव्यानुमिति की प्रतिष्ठा की? महिम भट्ट। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोल्लट के रस विवेचन का सैद्धांतिक आधार है मीमांसा। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य एवं उनका सैद्धांतिक आचार्य का सैद्धांतिक आधार आचार्य सिद्धांत दार्शनिक पीछिका। आचार्य भट्ट लोल्लट सिद्धांत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद दार्शनिक पीछिका मीमांसा। श्री शंकु सिद्धांत अनुमितिवाद दार्शनिक पीठिका न्याय। आचार्य भट्ट नायक सिद्धांत भुक्ति या भोगवाद दार्शनिक पीठिका सांख्य। अभिनव गुप्त सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद दार्शनिक पीठिका शैव। ग्रंथ लेखक संगीत रत्नाकर सारंग देव तेरहवीं शती। रसायण व सुधाकर सिंह भूपाल चौदहवीं शती। रस प्रदीपकार प्रभाकर सोलहवीं शती। रस को दो वर्गों सुखकारक दुखकारक में बांटकर किन आचार्य द्वय ने करुण रस भयानक रस विभत्स और रौद्र को दुखकारक तथा शेष को सुखकारक माना? रामचंद्र गुणचंद्र नवरस नामक ग्रंथ के लेखक हैं बाबू गुलाबराय। रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और। पृष्ठ संख्या 34। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्यात्मा घोषित किया? विश्वनाथ। द्विधा भिन्नम स्वभावोक्ति वक्तोक्तिश्चेति वाङ्मय, अर्थात वाङ्मय के दो भेद हैं स्वभावोक्ति तथा वक्तोक्ति। कथन किस आचार्य का है? दंडी। भामा के समान किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अति संयोक्ति का पर्याय मानते हुए उसे समस्त अलंकारों के मूल में स्वीकार किया है तथा वक्रोक्ति को लोक सीमा तिवर्तिनी विवक्षा अर्थात वस्तु के लोकोत्तर वर्णन की इच्छा कहा है? दंडी। विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को माना है शब्दालंकार। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। कथन किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। प्रतिभास्य हेतु व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम संस्कार्या। कथन किस आचार्य का है? हेमचंद्र। हेमचंद्र प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने तीनों काव्य हेतुओं प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास में से केवल प्रतिभा को जो कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा परिस्फुट होती है काव्य का हेतु माना। प्रतिभास्य हेतु व्युत्पत्ति अभ्यासाभ्याम संकार्या। शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप कथन किस आचार्य का है? मम्मट। सा प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपास्थिति। काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिभा कहते हैं। कथन किस आचार्य का है? जगन्नाथ। गुरुपदेशाध्येतुं शास्त्रं जडधियोप्लयम् काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावते। शास्त्र पठन तो गुरुपदेश द्वारा जड़ बुद्धि के लिए भी संभव है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है। क्योंकि सर्वप्रथम किस आचार्य काव्य हेतुओं के संदर्भ में प्रतिभा को अनिवार्यता घोषित की भाम। रुद्रट तथा कुंतक ने काव्य हेतुओं की संख्या मानी है 3। शक्ति भी उत्पत्ति अभ्यास नैसर्गिकी प्रतिभा निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग अभ्यास को काव्य हेतु किस आचार्य ने माना है दंडी। किस आचार्य ने प्रतिभा को एक आवश्यक हेतु माना है किंतु इस तथ्य का भी उद्घाटन किया है कि प्रतिभा शक्ति के बिना भी किन्हीं अवस्थाओं में भी उत्पत्ति और अभ्यास के आधार पर काव्य रचना संभव है दंडी। किन आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य का हेतु और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रतिभा का हेतु माना है हेमचंद्र बागभट द्वितीय जयदेव जगन्नाथ। किस आचार्य ने प्रतिभा अथवा शक्ति को काव्य का अनिवार्य हेतु और व्युत्पत्ति अथवा निपुणता तथा अभ्यास को काव्य का काम्य हेतु माना है आनंद वर्धन। रमणीय अनुभूति उक्ति वैचित्र और छंद इन तीनों का समंजित रूप ही कविता है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति का नाम काव्य है। सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है। कथन किस आलोचक का है डॉक्टर नगेंद्र। पृष्ठ संख्या 35। यदि कविता में चमत्कार नहीं कोई विलक्षणता नहीं तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कथन किसका है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। राजशेखर ने रस का प्रतिष्ठाता किसे माना है नंदकेश्वर को। केशव मिश्र 16वीं सती ने रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक किसे माना है सद्वोदनी को। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के 2 संस्करण उपलब्ध हैं। काव्यमाला बम्बई निर्णय सागर का संस्करण और 92 काशी संस्कृत सीरीज काशी चौखंबा का संस्करण। इनमें क्रमशः 36 और 37 अध्याय हैं। भरत मुनि ने कितने रस कितने गुण कितने दोष तथा कितने अलंकारों का उल्लेख किया है 8 रस 10 गुण 10 दोष 4 अलंकार। मुक्तम लोक स्वभावेन रसैश्च सकलैः पृथक उक्ति किस आचार्य की है भाम। शब्दार्थौ सहित काव्यम काव्य की इस परिभाषा में दोष है अति व्याप्ति दोष।